हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा ने अपना एक प्रतिरूप पृथ्वी लोक पर भेजा था, किंतु वो भी तारा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। लेकिन उस राक्षस के पास एकमात्र साधन उसकी माँ थी, इसीलिए उसने अपनी माँ से मदद लेने का फैसला किया था। इसीलिए वो राक्षस जल्दी ही आंखें बंद करके कठोर तप में लीन हो गया था। वहीं दूसरी ओर तारा परी की अगली सुबह आँख खुली तो वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी। और अचानक तारा परी ने सोचा, क्यों ना अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाए, क्या पता उसकी शक्ति उसे वापस मिल गई हो। क्योंकि उसका शरीर काफी हल्का था, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से काफी बड़ा भार उतर गया हो। तो इसीलिए अचानक तारा ने एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही तारा का कमरा रंग बिरंगी लाइट से सज गया था। अब जैसे ही तारा ने अपने कमरे को इतना खूबसूरत देखा, वो बहुत खुश हो गई और गोल गोल घूमकर अपनी खुशी सेलिब्रेट करने लगी। और साथ ही वो सोचने लगी कि अचानक से उसकी शक्तियां उसे वापस कैसे मिल गईं। जबकि काली शक्तियों को खत्म करने में 7 दिन का समय लगता था, लेकिन केवल 2 दिनों में उसकी शक्तियां वापस मिल गईं। तारा काफी हैरान थी। और अभी तारा अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ही रही थी कि तभी एक नौकरानी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। नौकर चाकर हमेशा हॉल में ही रहा करते थे। फैमिली मेंबर के कमरे में वे बहुत कम जाते थे, क्योंकि करिश्मा जी ने सभी नौकरों को मना रखा था कि वे केवल गार्डन और हॉल में ही रहें, किसी के कमरे में बहुत ज़रूरी काम हो तभी जाएं। तो जैसे ही एक नौकर ने आकर तारा का कमरा खटखटाया, तो जल्दी ही उसने अपने दाहिने हाथ की 3 बार चुटकी बजाई और देखते ही देखते उसका कमरा पहले जैसा हो गया, क्योंकि अमन पहले ही पवित्र होकर बगीचे के लिए निकल चुका था। क्योंकि उसके दादा महाराज ने उसका रात में आह्वान किया था, तो वो सुबह होते ही ये पता लगाने निकल गया था कि दादा महाराज ने उसका आह्वान क्यों किया था और वापस आने से क्यों मना कर दिया था। इसलिए अमन ऑफिस जाने से पहले बगीचे में पहुंच चुका था। इसलिए अब तारा को जैसे ही अपने कमरे में नौकरानी के आने का आभास हुआ, जल्दी ही उसने कमरा पहले जैसा कर दिया और दरवाज़ा खोलकर उस नौकरानी से कहने लगी, जी बताइए कैसे आना हुआ। उस नौकरानी ने कहा, तारा मैडम, आपसे मिलने के लिए कोई सोनल आई है। अब जैसे ही नौकरानी ने कहा कि सोनल आई है, तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगी कि सोनल परी को कब से उससे मिलने के लिए इस तरह इंसानों की तरह आना पड़ रहा है। वो चाहती तो गायब होकर भी सीधा उसके सामने आ सकती थी, तो अचानक से सोनल परी के इस तरह आने का क्या मतलब हो सकता है। कहीं ना कहीं तारा काफी हैरान थी, लेकिन वो जल्दी ही नौकरानी के साथ नीचे गई, जहां करिश्मा जी सोनल के साथ बैठी हुई थीं। अब जैसे ही तारा वहां गई, सोनल परी ने जाकर तारा को गले से लगा लिया और तारा हैरानी से सोनल की ओर देखने लगी, क्योंकि उसके शरीर से उसे आज परियों वाली कोई खुशबू नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी इंसान को गले लगा रही हो। तभी करिश्मा जी कहने लगी, अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो, मैं तब तक सोनल बेटी के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करवाती हूँ। ऐसा कहकर जल्दी ही करिश्मा जी वहां से उठ गईं। तभी तारा सोनल परी की ओर देखकर कहने लगी, सोनम, तुम्हारा तो नृत्य कार्यक्रम चल रहा था ना, तो तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गईं? और अभी तो तुम्हारा नृत्य कार्यक्रम चलते हुए 3 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, शायद 3रा दिन आज होने वाला था, फिर तुम ये क्या कर रही हो? और अक्षत कैसा है, वो ठीक तो है ना? तभी सोनल ने अपनी पलकें झुका ली थीं। वो तारा के सवालों का जवाब देना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था। तब तारा हैरान थी कि सोनल उसे कुछ क्यों नहीं बता रही है। तो अचानक तारा ने सोनल का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी आंखों में देखो। लेकिन जैसे ही तारा ने सोनल परी की आंखों में देखना शुरू किया, उसकी आंखों में उसे कुछ खास नजर नहीं आया। अब तो तारा परी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो कहने लगी, ये सब क्या है, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ है आखिरकार? तभी सोनल परी ने बताया कि बगीचे में क्या हुआ था, कैसे कुलगुरु ने खुश होकर उसे इंसानी योनि में रहने का आशीर्वाद दिया है, और साथ ही ये भी बताया कि वो चाहे तो परीलोक में भी वापस आ सकती है। जैसे ही तारा परी ने ये सुना, उसके हैरानी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने खुशी से सोनल को मुबारकबाद दी। कहीं ना कहीं तारा परी को इस बात की खुशी थी कि सोनम परी की मोहब्बत कामयाब हुई थी। वो काफी खुश थी और उसने उसे ढेर सारी दुआएं दी कि वो हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। तभी सोनल परी ने तारा का हाथ पकड़कर कहा, सुना है जिन वंशज बहुत जल्द आने वाला है, अब मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक सामान्य इंसान बन चुकी हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना और जिन्नातों के वंश का पूरी तरह से ख्याल रख सकती हो। तभी तारा परी ने सोनल परी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आने वाली नई जिंदगी के बारे में सोचो, और रही बात मेरी तो जिन अंश आ जाने के बाद वो मेरी हर तरह से रक्षा कर पाएगा और सारी परेशानी दूर कर देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तभी सोनल से ढेर सारी बातें करने के बाद तारा ने सोनल परी को विदा कर दिया। अब सोनल परी गायब होकर नहीं जा सकती थी, उसे सामान्य इंसानों की तरह यात्रा करके रिक्शा या अक्षत की भेजी हुई गाड़ी से ही जाना था, तो जल्दी ही सोनल वहां से चली गई। और तारा मन ही मन में सोचने लगी, काश उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो जाता और उसे भी अमन के साथ जिंदगी भर रहने का मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा होना उसके लिए असंभव था, क्योंकि तारा परी केवल एक परी ही नहीं बल्कि होने वाली रानी परी भी थी, जिस पर हजारों लाखों परियों की जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें वो अपने स्वार्थ के लिए कभी पीछे नहीं छोड़ सकती थी। वहीं दूसरी ओर सितारा परी सफेद बादल के रूप में कारावास में बंद थी। रानी माँ को उसका आभास हो चुका था, इसीलिए रानी माँ जल्दी ही अपनी बेटी सितारा परी के सामने मौजूद थीं। सितारा परी का सिर पूरी तरह से झुका हुआ था। तब रानी माँ ने उसे कहना शुरू किया, तुम जानती हो हमने तारा से ज्यादा हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को हमने माना, लेकिन तुमने हमें हमेशा धोखा दिया है, हमेशा हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी और तारा की परवरिश हमने एक तरह से की है, फिर तुम्हारी परवरिश में हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम ऐसी बन गई। कहीं ना कहीं इस वक्त सितारा परी को देखकर रानी परी काफी टूटी हुई थी और वो अपनी बेटी से अपने इस तरह के होने का जवाब मांग रही थी। तब अचानक सितारा परी ने अपनी आंखों में आए मोतियों को एक एक करके नीचे गिराना शुरू कर दिया था, और जैसे ही सितारा परी की आंखों से मोती गिर रहे थे वे गिरकर समाप्त होते जा रहे थे। अपनी बेटी की आंखों में इस तरह से आंसू देखने के बाद रानी परी का दिल काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो कहने लगी, क्या बात है सितारा परी, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो, क्योंकि भले ही तुमने कितनी ही गलतियां की हों लेकिन हमारे दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही जज्बात है, वही प्यार है जो हम तुमसे और तारा से करते हुए आए हैं।
अब जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, सितारा परी अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गई और जोरों से रोने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ करना होगा, मैं अब सुधर गई हूँ, कुलगुरु ने मेरे अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट कर दिया है, और जब से सारी बुराइयां जो मैंने की थीं मेरी आंखों के सामने आ रही हैं, तब से मुझे ये जिंदगी जी नहीं जा रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे कैसे मैं इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। ऐसा कहकर सितारा परी फूट कर रोने लगी और रानी परी कुछ देर उसे इस तरह रोते हुए देखकर वापस अपने कक्ष में आ गई, और उसका दिल बेचैनी से भर उठा था, इसलिए उसने अब सीधे तारा परी से बात करने का फैसला ले लिया था। वहीं दूसरी ओर तारा परी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जिस काली परी को लेकर वो बहुत दुखी हो रही थी, काली परी अब हमेशा के लिए परीलोक के कारावास में कैद हो गई थी। तब से उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर उठा था, लेकिन अब वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी, और इसीलिए उसने जल्दी ही करिश्मा जी से मिलकर सारी बातें बताने का फैसला कर लिया था। वो करिश्मा जी से मिलकर बताना चाहती थी कि अब उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं, और हालांकि वो बीच में इस बात को लेकर टूट गई थी और वो चाहती थी कि वो अमन सर को सारी बात बता दे और अमन से अपनी तिलिस्मी शक्तियों के बल पर काली परी को हरा दे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। अब तारा परी काफी खुश थी कि अमन को कुछ भी पता नहीं चल पाया था, और काली परी अब हमेशा के लिए परी लोक के कारावास में कैद हो गई थी। वहीं दूसरी ओर उस राक्षस के कठोर तप से जल्दी ही उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मौजूद थी। वैसे भी उसकी माँ को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और अभी तक उसने अपनी जान नहीं दी थी। जब जंगल में विक्रांत रंधावा की मौत हुई थी तब उस राक्षस की माँ ने खुद को एक मजबूत पेड़ में अदृश्य कर लिया था ताकि वो और कठोर तप कर सके और तारा परी को हराने का कोई ना कोई रास्ता निकाल सके, और आज कितने ही सालों बाद उसके बेटे ने उसे याद किया था तो वो खुशी खुशी अपने बेटे के सामने मौजूद थी। अपने बेटे को अर्धमूर्छित अवस्था में देखकर उस राक्षस की माँ का दिल कतरा रहा था और उसे रह रहकर बहुत बुरा लग रहा था, और वो कहने लगी, मेरे बच्चे अगर तू आज अपनी जिद छोड़ दे और तारा को हमेशा के लिए भूल जाए तो मैं आज अभी और इसी वक्त तुझे अपने अनुष्ठानों के बल पर आज़ाद करके अपने साथ ले जा सकती हूँ और हमेशा के लिए हम दानव की दुनिया में खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन दानव की दुनिया में जाने की सिर्फ एक शर्त होगी कि तू वहां से वापस ना तो इंसानों की दुनिया में जा सकता है और ना ही परीलोक में, तुझे हमेशा के लिए तारा को भूलना होगा। अब जैसे ही उस राक्षस की माँ ने आते ही उससे इस तरह की बातें करना शुरू की, उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था और वो गुस्से से दहाड़ते हुए कहने लगा, यहाँ मैंने आपको अपनी मदद करने के लिए बुलाया है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आप मेरी मदद कर सकें, इसलिए नहीं था कि आप मुझे तारा से दूर कर दें। अब तो आपने ये बात सोच ली है, लेकिन आइंदा से आप इस बात के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं तारा के बिना एक पल नहीं रह सकता, मुझे हर हाल में तारा परी चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ आपको मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप जाइए, पृथ्वीलोक पर जाइए और जाकर एक ऐसा शास्त्र तैयार कीजिए जो जिन्नातों के वंशज को पैदा होते ही खत्म कर दे, क्योंकि मैं हर हाल में जिन्नातों के वंशज की मौत देखना चाहता हूँ। अब जैसे ही उस राक्षस ने अपनी माँ से ये सारी बातें की, उसकी माँ अंदर ही अंदर छल्ला गई थी, क्योंकि वो तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि तारा की वजह से ही उसका बेटा इस तरह से हर बार अपनी जान खतरे में डाला करता था। लेकिन अब अपने बेटे की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था।